नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एआई पर आधारित मंच चैट जीपीटी का निर्माण करने वाली कंपनी ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टन ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ऑल्टमैन ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने भारत में एआई समाधानों को तेजी से अपनाने के बारे में विचार विमर्श किया। इस दौरान एआई के नियमन से संबंधित बिंदुओं पर भी उनकी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई। ऑल्टमैन ने इंद्रप्रस्थ आईआईटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि उद्योग जगत में स्वनियमन महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया को पूरी तरह से ऐसी कंपनियों के हाथ में नहीं छोड़ देना चाहिए जिनके पास एआई की ताकत है। ऑल्टमैन ने स्वनियमन पर हुई अनौपचारिक चर्चा के दौरान कहा कि ओपन एआई खुद ही अपना नियमन करता है और उसने चैट जीपीटी को पूरी तरह सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए लगभग 8 महीने का समय लगाया। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कई कारोबारी समूह भारत को वैश्विक स्तर पर विविधता लाने की रणनीति के तहत महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेशक नई आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश अवसरों के रूप में भारत को देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के उप सहायक और हिंद प्रशांत क्षेत्र के समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं और अब उनमें एक हद तक भरोसा और विश्वास है जो एक दशक पहले नहीं था। उन्होंने कहा, अमेरिका और भारत दोनों लोकतंत्रों में कुछ कमियां हैं, हम दोनों के सामने चुनौतियां हैं। मुझे लगता है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि हमने अमेरिका और भारत के बीच एक ऐसे भरोसे का स्तर विकसित किया है जो स्पष्ट रूप से एक दशक पहले मौजूद नहीं था। उन्होंने आगे कहा, कई व्यवसायिक समूह और निवेश समूह भारत को विश्व स्तर पर विविधता लाने की रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। नई आपूर्ति श्रृंखला और निवेश के नए अवसर के रूप में भारत को देख रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सबसे प्रभावशाली प्रवासी हैं। कैंपबेल ने यहां हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक में कहा कि हर कोई उस महत्वपूर्ण भूमिका को समझता है जो भारत वैश्विक मंच पर निभा रहा है, और कहा कि ये भूमिका केवल रणनीतिक नहीं है। ओडिशा सरकार ने 3,457 करोड़ रुपए के 18 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के मुताबिक इन प्रस्तावों के साकार होने से करीब 14,436 लोगों को रोजगार मिलेगा। ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव पी के जैना की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकल खिलाड़ी निपटान प्राधिकरण ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। अधिकारी ने कहा कि प्राधिकरण ने HLCA को 2 औद्योगिक परियोजनाओं की भी सिफारिश की है। इन 18 निवेश प्रस्तावों में 10 मेक इन ओडिशा सम्मेलन 2022 के दौरान मिले थे। अधिकारी ने कहा कि इससे इन निवेश सम्मेलनों की सफलता का पता चलता है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने बीते वित्त वर्ष में 4.6 अरब डॉलर की कर पूर्व आमदनी की, जबकि 2.8 अरब डॉलर का पूर्व पूंजीगत व्यय मुक्त नकद प्रवाह रहा। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में उसकी कर पूर्व एबिटा आय अब तक की दूसरी सर्वाधिक है। वहीं पूर्व पूंजीगत व्यय नकद प्रवाह भी अभी तक का सर्वाधिक है। कंपनी ने कहा, वेदांता की वित्त वर्ष 2022-23 में 4.6 अरब डॉलर की कर पूर्व आय रही। इस दौरान पूंजीगत व्यय से पहले मुख्य नकद प्रवाह 2.8 अरब डॉलर किया। वेदांत का सकल ऋण मार्च 2023 तक 12 महीनों में 9.8 अरब डॉलर से गिरकर 7.8 अरब डॉलर रह गया। आरबीआई की नीतिगत ब्याज दर में लगातार दूसरी बार बदलाव नहीं करने के बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि मुद्रास्फीति पर केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में रेपो दर में कटौती की संभावना नहीं है। हालांकि सभी जानकारों को उम्मीद है कि रेपो दर 6.5% पर स्थिर रखने का सिलसिला दिसंबर में होने वाली मौद्रिक समीक्षा तक जारी रहेगा। उन्होंने रेपो दर में पहली गिरावट फरवरी 2024 की समीक्षा बैठक में होने की उम्मीद जताई। HDFC बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने कहा, जहां आरबीआई गवर्नर को लेकर उत्साहित हैं और मुद्रास्फीति पर कम हुए दबाव को समझते हैं, वहीं वह मुद्रास्फीति के भविष्य के बारे में अधिक सतर्क भी हैं। वह मुद्रास्फीति को 4% के करीब रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। DGFT ने कहा है कि इस साल 31 अक्टूबर तक तरबूज के बीजों का आयात 35,000 टन से अधिक का नहीं होगा और केवल वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर ही इसकी अनुमति मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले DGFT ने 31 अक्टूबर 2023 तक तरबूज के बीजों के आयात के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है। पिछले साल जून में सरकार ने इन बीजों के आयात के नियमों में आंशिक ढील दी थी। DGFT ने आयात के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में 15 जून तक नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। DGFT ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, आवेदनों को वास्तविक उपयोगकर्ता के आधार पर केवल प्रसंस्करणकर्ता के लिए स्वीकार्य किया जाएगा, जो उनकी खुद की प्रसंस्करण क्षमता के आधार पर तय होगा। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर सिर्फ 0.29% रहने और मुद्रास्फीति के लगभग 29% तक पहुंच जाने का अनुमान सरकार ने जताया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने बृहस्पतिवार को वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए ये संभावना जताई। इस सर्वेक्षण में 30 जून को खत्म हो रहे वित्त वर्ष में राजनीतिक अस्थिरता और अभूतपूर्व बाढ़ के बीच सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।